किस्सा कहानी बाय निधि बासु पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। ये स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट आपके लिए लेकर आई हूँ मैं निधि बासु। इस पॉडकास्ट में सुनिए अपनी पसंदीदा हिंदी कहानियाँ केवल स्पॉटिफाई पर। मेरा पॉडकास्ट किस्सा कहानी बाय निधि बासु फॉलो करें और फॉलो के बगल में बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, जिससे मेरी हर नई कहानी आपको सबसे पहले सुनने को मिल जाए। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है अर्धांगिनी। इस कहानी को उड़िया में लिखा त्रिवेणी देवी जी ने। उड़िया साहित्य में ये एक लोकप्रिय कहानीकार के रूप में जानी जाती हैं। इंडिपेंडेंस के बाद के सालों में ये एक सशक्त महिला कहानीकार के रूप में उभरी। इन्होंने उड़िया में अनेकों कहानियों की रचना कर उड़िया साहित्य को समृद्ध किया। इस कहानी को हिंदी में अनुवाद करके हम तक पहुंचाया प्रोफेसर कपिलेश्वर प्रसाद जी ने। वाचन है मेरा यानी निधि बासु का। पहले आपको इस कहानी के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। अर्धांगिनी यानी वाइफ, आजकल स्पाउस या पार्टनर भी कहते हैं। ये कहानी एक यंग मैरिड कपल के बारे में है कि वो कैसे जीवन के उतार चढ़ाव को साथ मिलकर फेस करते हैं, लाइक ट्रू पार्टनर्स। पर्सनली मुझे ये कहानी बहुत इंस्पायरिंग लगी, इसलिए भी क्योंकि इसका मुख्य पात्र, इसका मेन कैरेक्टर एक लेखक है। सो विदाउट गिविंग अवे टू मच, चलिए चलते हैं अजय बाबू के कमरे में, जहां वे अपने नाटक का लास्ट सीन लिख रहे हैं।
भारती, रोशनी लाओ, दिया जो बुझ गया है। ओह, चारों ओर कैसा अंधेरा छा गया है, जल्दी रोशनी जलाओ।
बहुत बेचैनी से अजय बाबू चिल्ला उठे। उस समय रात के 11 बज रहे थे। अजय रोज की तरह ऑफिस का काम निपटाकर सरस्वती की सेवा में लग गए थे। कॉलेज में पढ़ते समय लिखने पढ़ने का एक झोंक सवार हो गया था। वर्तमान की कठोर नौकरीशुदा जिंदगी में भी वे रोज 2-3 घंटे साहित्य चर्चा किए बिना नहीं रह पाते। भारती को जीवन संगिनी के रूप में पाने के दिन से ये साधना और भी दुगनी हो चली है। उसी की प्रेरणा से अजय गढ़ जाते भावनाओं के नए नए महल, अंकित कर जाते लेखनी की नोक से नए नए चित्र, भारती के स्पर्श से जग उठती सारी सोई शक्ति। अजय प्रसन्न चित्त से पन्ने के पन्ने लिख जाते, हृदय के गंभीरतम प्रदेश में जकड़ी हुई भावनाएं प्रवाहित होकर ऊंची ऊंची लहरों की सृष्टि करती। आज भी वे नया नाटक लिखने बैठे थे। भारती कुछ समय के लिए उठकर दूसरे कमरे में नन्हे से बेटे की देह चादर से ढकने के लिए गई थी। अचानक अजय की ये विकल पुकार सुनकर भारती के पैर और आगे नहीं बढ़ सके। उसका सारा शरीर डर से कांप उठा, मुंह से एक भी शब्द न निकला। ये कैसा आश्चर्य, दिया तो पहले की तरह ही जल रहा है, चारों ओर उजाला है, फिर भी अजय इतना परेशान होकर चिल्ला रहे हैं, दिया बुझ गया। भारती के कमरे में प्रवेश करते समय अजय ने फिर से उसी अधीर भाव से कहा,
ओ भारती, कहां गई, अभी तक दिया नहीं लाई, मैं कुछ नहीं देख पाता, नाटक का अंतिम दृश्य अधूरा रह गया है।
भारती ने दौड़कर अजय का हाथ अपने हाथ में दबा लिया, मुंह को ऊपर उठाकर देखा, किंतु अभागे अजय के लिए सब कुछ अंधकारमय, सब महाशून्य। वे करुण भाव से भारती की ओर केवल देखते रहे। उनकी आंखें स्थिर, निष्प्रभ, गर्म गर्म आंसू बहाने के सिवा इनका कोई दूसरा काम न था। इनकी देखने की शक्ति पहले से ही कमजोर थी। ये कठिन परिश्रम दोनों दुर्बल आंखें शायद सहन नहीं कर सकी। अजय ने फिर एक बार पुकारा,
भारती, भारती, मैं अंधा, तुच्छ, घिनौना।
भारती टूटे हुए दिल वाले अधीर पति को किस भाषा में समझाए, क्या कहकर आश्वस्त करे। अनंत रेगिस्तान में भटका हुआ पथिक वो, दूसरे को पथ दिखाना क्या अब उसके लिए संभव होगा? इतने दिनों बाद उसे लगा कि आज वो बिल्कुल अकेली है। उसे इस जीवन संग्राम में अकेले लड़ना पड़ेगा। पति के वरद हस्त तले अपने को सुरक्षित रख सांस लेने के लिए मानो आज से उसे अधिकार नहीं, बात बात में पति पर निर्भर होकर चलना और संभव नहीं। असहाय पति के लिए प्रयत्न करना होगा, जीवन यापन का उपाय सोचना होगा। भारती और नहीं सोच सकी। परिवर्तन दुनिया का न बदलने वाला सत्य, अपरिवर्तित तो कुछ भी नहीं रहता। मनुष्य का मन कैसे रह सकता है? अजय कुछ दिनों से केवल यही सोच रहे हैं। सब जगह उन्होंने परिवर्तन के चिन्ह देखे हैं। उनकी अपनी अवस्था में परिवर्तन घटने के साथ साथ भारती के आचार व्यवहार में भी घोर परिवर्तन का उन्होंने अनुभव किया है। आंख रहते समय से इस समय सब कुछ बदल गया है। जो भारती एक दिन काया के साथ छाया की तरह उन्हें छोड़कर जरा भी अलग नहीं रह पाती थी, रात दिन उन्हीं की सेवा करती थी, आज वो इतनी दूर कैसे चली गई? उनके पास रहना तो दूर की बात, दिन के समय बहुत समय वो घर में भी नहीं रहती। कहां जाती, क्या करती, इस संबंध में अजय एक बार भी पूछना नहीं चाहते थे। भारती भी ये प्रसंग नहीं छेड़ती। और एक परिवर्तन अजय स्पष्ट रूप से जान पाते हैं। भारती सरल भाव से अजय को सब बातें नहीं कहती, कपट का आभास वे अच्छी तरह पा चुके हैं। पर बहस करने के लिए, आपत्ति करने के लिए अजय के पास बल नहीं। वे अंधे जो ठहरे, उन्हें अभिमान करने का अधिकार नहीं और न स्नेह ममता पाने का दावा ही। अंधे की दिन रात सेवा करना क्या आसान बात है? इसीलिए भारती दोपहर में कहीं चली जाती होगी। एक दिन दोपहर के समय अजय की इच्छा हुई मेहर की कविता सुनने की। उन्होंने भारती को पुकारा, पर उनके वेदना भरे हृदय को और भी भारी कर दिया उनकी बूढ़ी मौसी के उत्तर ने।
बहू घर में नहीं है, कहां गई कौन जाने, कह गई है 4 बजे लौटेगी। तुम्हारा तो अब वश नहीं, जहां चाहती है चली जाती है। यहां छोटे बच्चे को लेकर मैं बूढ़ी औरत हैरान होती रहती हूं।
अजय गंभीर हो उठे। भारती की निंदा सुनने के लिए वे तैयार न थे, किंतु मन अशांत हो उठा। भारती घर में नहीं रहना चाहती, वे जितना ये बात स्वीकार करने में कुंठा का अनुभव करते, उतना ही हृदय का द्वंद संभाल नहीं पाते। इसलिए वे 4 बजे की प्रतीक्षा में रहे। जिस ओर भी क्यों ना गई हो, लौटने पर निश्चित ही उनके पास बैठकर मेहर कवि की ललित कविता अपनी मीठी आवाज में गाकर सुनाएगी और अजय के सूखे नीरस जीवन में थोड़े बहुत रस का संचार करेगी। घड़ी का घंटा टन टन करके बज उठा। 4, 4:30, 5। अजय बेचैन हो उठे। कितनी ही तरह की दुश्चिंताओं से मन विचलित हो गया। कोई दुर्घटना तो नहीं घटी, भारती किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गई? पर जो भी हुआ हो, अजय के पास बहस करने की शक्ति नहीं थी। ओ भगवान, थोड़े समय के लिए ही उनकी देखने की शक्ति लौट आती, वे दौड़ जाते भारती की खोज में। सब तरह की आपत्ति विपत्ति से भारती को अपने घर के भीतर अपनी बाहों की छाया के तले ले आते। तभी दरवाजे के पास से भारती की आवाज सुनाई दी। अजय ने हाथ जोड़कर ईश्वर को धन्यवाद दिया। भारती ने बाहर बरामदे में कुर्सी डालकर आए हुए अतिथि को बैठने के लिए अनुरोध किया। बहुत समय तक वो वहीं पर बातचीत करती रही, मानो अजय के पास आने का उसका जरा भी मन नहीं। दरवाजे के पास से मीठी मधुर आवाज आ रही थी। अजय की इच्छा न रहने पर भी उनके कुछ शब्द सुनाई पड़े। आए हुए अतिथि भारती की कर्तव्य निष्ठा, सहज शक्ति और महान गुण की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। उन्होंने स्त्री जाति के श्रेष्ठ आसन पर उसे बैठा दिया। ऐसी स्त्री के पति कितने भाग्यवान हैं? ये बात अतिथि के मुंह से निकलते ही अजय के दिल का घाव हरा हो उठा। वे भाग्यवान हैं तो अभागा कौन है? उनके प्रति दया दिखाई जा सकती है, पर क्या ईर्ष्या करना शोभा देता है? ये सब निश्चय मजाक, उनके प्रति व्यंग की वाणी है। असहाय होने पर भी उनके पौरुष को धक्का लगा, वे व्याकुल हो उठे। नहीं नहीं, वे और नहीं सह सकेंगे, वे और अपनी पत्नी पर निर्भर होकर नहीं पड़े रहेंगे, अन्य किसी व्यक्ति के प्रेम का पात्र नहीं होंगे। अंधे वे भिखारी के वेश में कहीं चले जाएंगे, नहीं तो आत्महत्या। भारती एक बार फिर हंस पड़ी। उदास चेहरे वाली भारती आज हंस रही है? उसके हृदय का आनंद आज किसी प्रकार का बंधन स्वीकार नहीं कर पाता। इतने आनंद का कारण कौन है? किसके कारण भारती आज इतनी प्रसन्न है? भारती घर के भीतर दौड़ आई। अजय के पैरों तले बैठ उनकी गोद में माथा रखकर कहा, इतने दिनों के बाद मेरा सपना सच हुआ है, मेरा परिश्रम सार्थक हुआ है। भाग्य के विरुद्ध युद्ध घोषणा कर आज विजयी बनी हूं। आपका मानव और प्रकृति नाटक मैंने अखिल भारतीय नाटक प्रतियोगिता के लिए भेजा था। आपसे न बताकर आपका दस्तखत भी ले लिया था। मैंने आपको सूचित नहीं किया था। मेरा ये पागलपन देख संभव है आप बात को हंसी में उड़ा देते, इसका डर था। पर आज आप मेरी हंसी नहीं उड़ा पाएंगे, मैं सफल हुई हूं। आप पूरे भारतवर्ष में श्रेष्ठ नाटककार के रूप में चुने गए हैं। 5,000 रुपए का प्रथम पुरस्कार मिला है। और ये जो भले व्यक्ति आए हैं पत्रकार हैं, आपसे कुछ जानकारी लेकर सभी भाषाओं के समाचार पत्र में देंगे। प्रोफेसर बालकृष्ण पाणिग्रही ने आपके नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। कुछ दिनों से मैं रोज दोपहर के समय उनके घर इसी काम से तो जाती थी। अजय एकाग्र भाव से सुन रहे थे, भीगे हुए गले से बोले, इस अयोग्य पति के लिए इतना परिश्रम क्यों भारती? मैं तो तेरी किसी प्रकार भी सहायता नहीं कर पाता। भारती के चेहरे पर स्वाभिमान झलक आया।
मैं आपकी जीवन साथी नहीं हूं क्या? केवल सुख के समय आपके लिए परिश्रम करूंगी और विपत्ति के समय आपसे अलग हो जाऊंगी। अच्छा छोड़िए ये बातें, कहें आप खुश हैं कि नहीं? आज आप एक प्रसिद्ध लेखक हैं। आप और लिखें, ढेर ढेर पुस्तकें लिखें, आप नई नई रचना करें। आप बोलेंगे, मैं लिखूंगी। मेरी आंखों से आप देखेंगे, मेरे हाथ से लिखेंगे। आप और मैं दोनों अलग अलग ना होकर एक हो जाएंगे। तब मैं सच्चे अर्थ में बनूंगी अर्धांगिनी।
आप सुन रहे थे कहानी अर्धांगिनी। इस उड़िया कहानी की लेखिका थीं त्रिवेणी देवी जी। इस कहानी का हिंदी में अनुवाद किया प्रोफेसर कपिलेश्वर प्रसाद जी ने। वाचन था मेरा यानी निधि बासु का। आज की कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपके कमेंट्स या फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। तो सुनते रहिए किस्सा कहानी बाय निधि बासु केवल स्पॉटिफाई पर, और फॉलो बटन दबा के पॉडकास्ट फॉलो करना न भूलें।